ओम शांति। आदरणीय राजू भाई जी का हम सब एक हाथ की ताली से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है। आप बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान में हैं। 1972 में आपने अपना जीवन बाबा की सेवाओं में समर्पित कर दिया। हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चों तक बाबा की मुरली पहुंचाने का श्रेय, सारा पुण्य हमारे राजू भाई जी को ही जाता है। मुरली में जो प्रश्न उत्तर वरदान स्लोगन दादियों का जो पत्र पुष्प आता है, वो भी आप ही हम तक पहुंचाते हैं। आप ग्राम विकास विभाग के मधुबन हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर भी हैं। योग की गहन तपस्या में आपकी विशेष रुचि है, स्वाध्याय आपकी विशेषता है, और भारत और भारत से बाहर कई देशों में जाकर योग भट्टियां कराकर और आध्यात्मिक प्रवचनों से आपने अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया है। आपके लिए मैं दो शब्द कहूंगी, साकार में शिव की मुरली, ब्रह्मा के मुख से सुनी नहीं। साकार में शिव की मुरली ब्रह्मा के मुख से सुनी नहीं, अव्यक्त वाणियां भी आरंभ की बहुत बच्चों ने सुनी नहीं, किंतु आपकी अथक सेवा से आंखों के सुर मिल जाते हैं। नहीं कोई जिससे पढ़ करके श्रीमत की धुनगुनी नहीं। मुरली का सार हो या प्रश्न उत्तर हो, गीत सुरजीत कर देते हैं। धारणा वरदान और स्लोगन हम सब में गहरी ज्ञान की नींव भर देते हैं। हे मुरलीधर के मास्टर मुरलीधर राजू भाई, हे दादियों के पुष्प के माली, पत्र पुष्प के माली, आपकी लेखनी से मूर्त हुए शब्द दूर बैठे भी आप मधुबन सजीव कर देते हैं। ऐसे बाबा के विशेष सेवाधारी अनमोल रतन राजू भाई जी का फिर से हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आज विशेष क्लास हम करेंगे स्वरक्षक मर्यादा रक्षक यज्ञ रक्षक। आदरणीय राजू भाई जी,
ओम शांति। सभी के अनुभवों का एक बहुत सुंदर गीत बज रहा था। आप सबके ऊपर बाबा ने वरदानों की तो बहुत अच्छी वर्षा कर दी है। हुई ना वरदानों की वर्षा, तो मुलाकात का अनुभव किया कि नहीं? बाबा से मुलाकात हुई या नहीं हुई? हुई। तो आप सबने 3 दिन बहुत अच्छी तपस्या की, बाबा से अनेक वरदान प्राप्त किए, बाबा संग मिलन मनाया, कितना भरपूर होकर के अपने अपने स्थानों पर जाएंगे। बाबा हम सब बच्चों को सुरक्षा कवच दे देता है, क्योंकि जानता है कि माया के इस राज्य के अंदर बहुत सारे दुश्मन, माया के दुश्मन, विकारों रूपी दुश्मन हम सबके चारों ओर पहरा दे रहे हैं। और अगर कोई भी जरा भी अलबेला होता है तो माया उसको घसीट के अपना बना लेती है। इसलिए ये आज का क्लास आपको इसलिए मिला है कि आप मधुबन बेहद घर से, इस वरदान भूमि से, तपस्या भूमि से सुरक्षा कवच अपने साथ लेके जाना, और वो सुरक्षा कवच सदा साथ रखना। 3 बातों में उस सुरक्षा कवच के विषय में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम सब जानते हैं एक तरफ इस वायुमंडल में बहुत सी आत्माएं जिनको जन्म नहीं मिलता, इच्छाएं लेकर के भटकती हैं, और चलते चलते अगर हमारी इच्छाओं के साथ उनका मेल हो जाता है तो परेशान करती है। सूक्ष्म में चारों ओर नेगेटिव वातावरण है, व्यक्तियों के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कई प्रकार की भावनाएं भरी हुई हैं, और देह अभिमान के कारण चारों ओर का वायुमंडल विकारों से भरपूर है। अब ऐसे समय में अगर ब्राह्मण आत्माएं सिर्फ केवल मुरली सुने, थोड़ा समय के लिए सेंटर पर जाएं, और उसके बाद अपने कार्य व्यवहार में, अपने अपने धंधों में इतना व्यस्त हो जाएं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में माया हमारी आंतरिक स्थिति को बिगाड़ देती है, खुशी गायब हो जाती है, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। इसलिए सदा के लिए हमारे ऊपर एक सुरक्षा कवच साथ रहे, तो जैसे वह दुश्मनों से जब कोई भय होता है, जो बड़े VIPs होते हैं, आजकल तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां, बुलेट प्रूफ सब चीजें हो गई, लेकिन पहले जमाने में एक कवच दे देते थे कि कपड़े की कुर्ते के नीचे पहन करके इसको रखो, कोई अगर अटैक करेगा तो गोली अंदर नहीं जाएगी, कुछ भी आपको नुकसान नहीं होगा। बाबा भी अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे मैं तुमको सुरक्षा कवच देता हूं, वो सदा साथ रखना। सबसे पहला सुरक्षा कवच है हम सब के बहुत सकारात्मक विचार, शुद्ध संकल्पों का घेरा। कभी भी अपने प्रति, परिवार के प्रति, या किसी भी आत्मा के प्रति, या किसी भी कार्य के लिए, बाबा ने हम सबको मना किया है कि बच्चे कभी भी ये नहीं सोचना कि ये है ही ऐसा, या ये कार्य होने वाला ही नहीं है। संगम युग पर हम सबको एक वरदान है बाबा का, हमारी डिक्शनरी के अंदर असंभव शब्द नहीं है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा कोई भी संकल्प रचे, अच्छे संकल्प सिद्धि को अवश्य प्राप्त होते हैं। इसलिए असंभव शब्द नहीं कहना कि यहाँ पर ये कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, यहाँ का वायुमंडल ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है, और हम ऐसे साधारण नेगेटिव संकल्प करके कई बार न होने वाली घटना को अपने संकल्पों से आह्वान कर लेते हैं। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दो मंत्र दिए हैं, अपने लिए शुभ चिंतन और अन्य आत्माओं के लिए शुभ चिंतक। जिसके पास बहुत स्वचिंतन है, स्वचिंतन आत्म उन्नति का चिंतन, वो आत्माएं शुभ चिंतन में रहती हैं। सदा शुभ सोचना है मुझे, कोई भी कार्य में अशुभ हो ही नहीं सकता कि हम सब बाबा के सिद्धि स्वरूप बच्चे हैं। सिद्धियां हमारे पीछे पीछे आएंगी, लेकिन बाबा कहता सिर्फ स्वीकार नहीं करना, नहीं तो गुम हो जाएंगे। आज के वरदान में भी था ना, विधि से सिद्धि। तो हम सबको बाबा विधियां सिखा देता है कि विधि पूर्वक अगर चलोगे, विधि माना हमारे नियम मर्यादाएं, वो विधि है, तो विधि पूर्वक चलने से सिद्धियां अवश्य प्राप्त होंगी। इसलिए अगर कोई के अंदर ऐसी आदत है, कई आदत होती है कि कार्य होगा नहीं, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसके पास जाना ठीक नहीं है, यहां जाओगे ये हो जाएगा, वहां जाओगे वो हो जाएगा, खुद के अंदर संकल्प होते हैं और साथियों को भी वही संकल्प दे देते हैं पहले से, और उससे बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं। बाबा साथ होते भी शुभ संकल्प की बजाय अगर कोई के नेगेटिव संकल्प हैं, तो नेगेटिव संकल्प कहीं न कहीं लीकेज है। इसलिए हम सबको इस बात को अंडरलाइन करना है कि हमें सदा स्वचिंतन में रहना है, शुभ सोचना है, और सब आत्माओं का भला हो, कल्याण हो, उन्नति हो, सब परमात्म वर्षे के अधिकारी बने, ऐसी शुभ भावना का शुभ चिंतक बनकर चलना है। तो ये एक सबसे पहला हम सब के लिए सुरक्षा कवच है। बहुत सारी बातों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता, कोई भी नेगेटिव हमारे लिए अगर सोच भी रहा हो, क्योंकि आजकल चरा भी किसी से नहीं बनती है, किसी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं या कोई आगे बढ़ रहा है उसको पीछे धकेलना चाहते हैं, तो बड़े कलयुग के अंतिम वार हैं। भूत विद्या तो है ही, लेकिन आज तांत्रिक विद्या भी बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई है। कोई कुछ खिला देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ करेगा, और कहेंगे हम क्या करें, मेरा मन शांत नहीं रहता, मेरे को बहुत विचार चलते, ये होता वो होता, और कई तो उसी के अंदर उलझे हुए रहते, बाबा की प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर पाते। जबकि बाबा कहता है बच्चे मेरे, अगर सच्चे बच्चे हैं, मेरी याद की सुरक्षा कवच के अंदर रहते हैं, तो उनको कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। हमारे नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प उन बातों को प्रभाव डालते हैं। इसलिए सबसे पहले हम सब एक संकल्प करके बाबा के घर से जाएं कि हम बहुत पॉजिटिव, सवेरे आंख खुलते ही संकल्प भर लो कि मैं उस सर्वशक्तिवान पिता की संतान, सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूं, और उस महानता के नशे में रह करके मैं इस तन में अवतरित हुई हूं परमात्म संदेश देने के लिए। कार्य कोई भी है, हर एक कार्य के पीछे ब्राह्मणों की एक ही एम ऑब्जेक्ट है कि हमारे हर कर्म से बाबा की प्रत्यक्षता हो, बाबा दिखाई दे, लोगों को पता चले, कर्म कोई भी किया जाए। इसलिए अगर ये कवच हम सब साथ रखते हैं तो बहुत समय पर मदद मिलती है और हमारी सुरक्षा हो जाती है। दूसरा कवच, हर एक एक बहुत निजी धारणा बना ले। हमारी दादी जी का स्मृति दिवस चल रहा है, मैं दादी जी की एक विशेषता आपको बताता हूं। दादी जी ने नम्रता का कवच पहन के रखा था, इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी कभी उस अथॉरिटी का प्रयोग घमंड वाले, अहंकार वाले, पद पोजीशन वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया। बहुत नम्र चित, कोई कुछ भी कह के चला जाए। मैंने देखा, कई बार सुना होगा आप लोगों ने, हमने सुनाए अनुभव में, कि अगर दादी के सामने कोई बहुत जोर जोर से बोल के चला गया, क्योंकि जब मुख्य कोई होता है, हेड होता है, तो उसके सामने बहुत सारी बातें आती हैं। अगर एक की तरफ कोई थोड़ा सा निर्णय अलग हो गया, एक का ठीक हुआ, एक के बातों के विपरीत हो गया, तो उसको गुस्सा आता है। यहाँ पर भी ये है, ऐसे भी करते हैं, पक्षपात है, बहुत सारी बातें होती हैं। संगठन जब होते हैं बड़े, बहुत कुछ सहन करते हैं। तो मैं देखता था कि आज मैं कभी कभी बीच बीच में जाता रहता था पत्र के लिए, कोई भी काम के लिए। एक व्यक्ति बहुत गुस्सा करके चला गया, उल्टा सीधा बोल करके। दादी चुपचाप दृष्टि देती रहती, सुनती रही, कुछ नहीं बोली। तो जब वो निकल गया, पहले तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी मैं जाऊं ऐसे समय पर दादी के पास, लेकिन मेरा काम जरूरी था, मुझे जाना था। तो दादी की नजर पर आओ आओ बुलाया मेरे को अंदर। तो मैंने कहा कुछ तो दादी बोलेगी कि ये व्यक्ति ऐसा, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये बोलता है ऐसे। मैं बैठा दादी को देखता रहा। दादी एकदम चुप गंभीर थी, फिर बोलती, अच्छा हाँ हाँ सुनाओ, तुमको क्या काम है, किस लिए आए हो? ना दादी ठीक तो है सब, कुछ हुआ है क्या? कहती अरे तो चलता रहता है, ये तो यज्ञ है, कोई बातें होती रहती हैं। मैं बातों को अंदर नहीं रखती, अगर बातों को अंदर रखूंगी ना तो बाबा नहीं अंदर रहेगा। ये बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, थोड़ी बहुत नीचे ऊपर बातें होती हैं, डिस्टर्ब होते हैं, बोल देते हैं। दादी उसको सहन कर लेती है, समा लेती है, कभी कुछ बोलती नहीं है, सब अपने आप रियलाइज करेंगे। तुम अपना काम बताओ, करके जाओ, सब ठीक है, कुछ नहीं है। और इतनी नॉर्मल रीति से उस बात को दादी ने लिया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, भूल गई उस बात को, भुला दिया। नहीं तो इतनी बड़ी अथॉरिटी है, कुछ भी यूज कर सकती है, निष्कासित करवा सकती है, कुछ भी कर सकती है ऐसे व्यक्ति को। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, जोश में था, बोल दिया, कुछ हो गया, हट जाने है। तो एक नम्रता का अवतार होने के कारण नम्र चित्त बन करके रही, इतने बड़े यज्ञ को बहुत निर्विघ्न रूप से इसी आधार से चलाया। कुछ भी हो जाए लेकिन सहन किया, समाया, सामना किया और उसको बहुत प्यार से, नम्रता से, सम्मान दे करके आगे बढ़ा दिया। बात को बढ़ाया नहीं, बात को समाप्त कर दिया। कई बार हम लोग बातों को सोच सोच करके या बोल वर्णन करके उसको बहुत बड़ा कर देते हैं और वही बातें हमारे लिए बहुत बड़े रूप में विघ्न बन करके आती हैं। बहुत व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों की उत्पत्ति वहां से होती जहां से हम कोई बात को सहन नहीं कर पाते, समा नहीं पाते। इसने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी ग्लानी कर दी, मुझे ऐसे बोल दिया, मैं भी तो कुछ हूं, ये क्या समझता अपने को। इस प्रकार की जो भाषा का प्रयोग है ये अहम की निशानी है। कभी भी हमारी दादियों ने इस भाषा का प्रयोग नहीं किया और उन्होंने नम्रता का कवच पहन करके रखा, इसलिए आज यज्ञ के अंदर सबके मुख से कैसा भी हो, हरेक के मुख से निकलता है मेरी दादी, मेरा बाबा जैसे कहते हैं। अब बाबा को तो साकार में सबने नहीं देखा, लेकिन दादी की पालना तो मैं समझता हूँ आप सबने भी ली होगी। कौन ऐसे हैं जिन्होंने नहीं लिए? जो नहीं ली वहां तो उठाओ। अच्छा हैं ऐसे भी, लेकिन दादी जी को भी 12 साल हो गए अव्यक्त हुए, और 12 साल के एक 2 साल पहले जो आए होंगे शायद उनको दर्शन हुए हों। तो दादी प्रकाश मणि जी जिन्होंने इस यज्ञ को इतना विस्तार किया, इतना आगे बढ़ाया, जितने भी कॉम्प्लेक्स जो आप देखते हैं, शांति वन है, मनमोहिनी वन है, ज्ञान सरोवर है, ओम शांति भवन है, बहुत नम्रता के साथ सम्मान देते हुए, सबको साथ लेते हुए इस यज्ञ की इतनी वृद्धि के निमित्त बनी एक ही आत्मा अपने बलबूते से। इसलिए ऐसे स्मृति दिवस पर उनको सभी बहुत याद करते हैं। तो नम्रता का कवच हमारा सुरक्षा कवच है। मैं ये कहना चाहता हूं केवल एक आत्मा ने पहन लिया नहीं, हम सबको ये कवच यहां से पहन के जाना है। कभी भी अहम की भाषा का जोश में प्रयोग नहीं करना है। जो कोई कह रहा है, बाबा कहता है पहले सोचो धैर्यता के आधार से, अगर कुछ बोलना है तो जरूर बोलो, नहीं तो चुप रहने में बहुत बड़ा भला है, कल्याण है। नम्रचित होकर के धैर्यता से सुना, समाया, और अगर कहना है तो बहुत युक्ति युक्त दो शब्द बोल के उत्तर दिया, नहीं तो शांत होकर के रहे। इससे संगठन कभी टूटते नहीं है, टकराव की स्थिति पैदा नहीं होती। जहां जहां दुश्मनी है, जहां पर वैर भावनाएं हैं, बदला लेने की भावनाएं हैं, वो नम्रचित बनने से वो सब समाप्त हो जाती है। इसलिए दूसरा कवच हमारा सुरक्षा का है, नम्रता का। और तीसरा एक विशेष ध्यान देना, क्योंकि हमारे पुराने हिसाब किताब बहुत हैं, आत्माओं के साथ भी हैं, प्रकृति के साथ भी हैं, इसलिए प्रकृति, ये शरीर रूपी प्रकृति भी कई बार बहुत डिस्टर्ब करती है आत्मा को, और व्यक्ति भी चलते चलते कुछ न कुछ बोल करके हमारी स्थिति को ऊंचे से नीचे ले आते, उसमें भी हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। तो तीसरा सुरक्षा कवच है अपने संगठन में सबकी दुआएं। जिन आत्माओं ने दुआओं का स्टॉक जमा किया है, कोई भी बातें आती हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। दुआएं उनके लिए बहुत बड़ा बल है, शक्ति है, सुरक्षा कवच है। और हम सब जानते हैं कि दुआएं तब मिलती हैं जब किसी भी आत्मा को समय पर सहयोग मिलता है, साथ दिया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। समय पर मदद करने से दुआएं मिलती हैं, और वो दुआएं अगर किसी ने बहुत अच्छी तरह से जमा की हैं, तो कोई भी पेपर आया, शरीर का आया, दादियों के आगे और अधिक पेपर नहीं आया तो शरीर का तो सबके साथ आया, लेकिन शरीर के पेपर को उन्होंने ऐसे सूली से कांटा बनाया जो कभी भी मुख से ये नहीं कहा कि मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। एक बात सुना देता हूं, क्योंकि दादी जी की स्मृतियों में हम 3-4 दिन से सुन रहे हैं। 2 साल मैं समझता हूं, लगभग 3 साल दादी के आगे शरीर का बड़ा पेपर था, कुछ न कुछ होता ही रहता था। तो एक बार बॉम्बे से यहां आई, हॉस्पिटल से ही आई थी, ऑक्सीजन भी थी लेकिन ठीक थी, वैसे ठीक थी लेकिन बिस्तर पर ही थी। तो मैं दादी के पास गया, हमने कहा दादी बहुत दिन हो गए, मैं आपके नाम से पत्र लिखता रहता हूं, मुझे लगता है कि मैं गलती कर रहा हूं, आप बीमार है और मैं आपकी तरफ से पत्र लिखता हूं, दादी प्रकाश मणि के नाम से लिखता हूं, तो मुझे थोड़ा सा लगता है। अरे भाई, तुमको मैंने तो बाबा की तरफ से बहुत अच्छी दुआएं मिली हुई हैं, वरदान मिला हुआ है, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, लिखते रहो, दादी की दुआएं हैं साथ, ऐसे बोल दिया। हमने कहा नहीं, मुझे एक संकल्प आता है कि आप अभी तो ठीक हैं, आप लिखाओ मुझे कुछ, जो लिखाओगे तो मैं लिखूंगा, नहीं तो अभी पत्र बंद कर देता हूं, ऐसे बोला तो एकदम गंभीर हो गई। कहती है क्यों इतना अच्छा लिख रहे हो, सबकी दुआएं मिलती हैं, सब क्यों ऐसा सोचते हो? मैं दादी आपको लिखाना है, तब तक गुलजार दादी सामने आ गई, हम केवल दादी से अकेले बैठे हुए थे, गुलजार दादी आई तो गुलजार दादी हंसते हुए बोलती, क्या आप आज दोनों बात कर रहे हो? तो दादी कहती है, दादी गुल आज ये मेरे पीछे पड़ा है, पत्र लिखो, पत्र लिखो, अरे इतना अच्छा लिखता है, और फिर भी कहता आप। तो गुलजार दादी बड़े प्यार से बोलती, दादी लिखाना तो चाहिए। अब दादी ने ऐसे बोला लिखाना तो चाहिए, तो दादी चुप, मेरे को देखती, अच्छा लिखो लिखो। तो जब मैंने कॉपी पेंसिल उठाई तो पहले लिखाते हैं लिखो, दादी 100% ओके है। मेरा दादी ये तो नहीं लिखूंगा मैं, और ये लिखूंगा तो लोग तो सोचेंगे राजू ने सब झूठा लिखा है पत्र, अपने मन से लिख दिया। जो बिस्तर पर है, जिसको ऑक्सीजन लगी है, पेट पर है, वो उसको मैं लिखूंगी 100% ओके है, तो दादी थोड़ा सा सोच के लिखना चाहिए ना, बोलना चाहिए। तो कहती मेरे क्या हुआ है? हमने कहा दादी मैं भी कहता हूं आपको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये कैसे लिखूं 100% ओके? अरे दादी तो 100% से भी ऊपर ओके है, कुछ नहीं हुआ दादी को, ये तो डॉक्टरों का कुछ चक्कर है, मुझे तो इतना बड़ों की सबकी आप सबकी परिवार की बाबा की दुआएं हैं, कोई तकलीफ नहीं, मैं तो बाबा के प्यार में गोदी में बैठी हुई हूँ, मेरे को सबकी दुआएं बहुत मदद करती हैं, ये तो 19 भी चलता है ना, मैं तो ओके हूं, तुम लिख दो। अब मैं चुप, मैंने लिखा, दादी कह रही है मैं 100% ओके हूं, कोई तकलीफ नहीं। फिर दूसरे शब्द कहती है कि लिखो दादी बड़ी बड़ी भाकी पहन के सबको बहुत प्यार कर रही है, ऐसे हाथ उठाया। फिर कहती रुको रुको ये नहीं लिखो, मैं कैसे प्यार करूंगी, प्यार तो बाबा करेगा ना। गुलजार ये लिखना चाहिए मुझे, तो गुलजार दादी कहती है दादी बाबा की जगह पर तो आप हो ना, आप नहीं लिखोगे तो कौन लिखेगा, जरूर लिखो। ऐसे बहुत अच्छी बहुत मीठी रूह रियान हो रही थी, ये रूह रियान है, इसको रूह रियान कहते हैं। 5-7 लाइन लिखाई ऐसे ही, और भी कई शब्द लिखा है। फिर कहती अभी तुम बढ़ा के लिख देना एक पेज बना करके, ठीक है। मैं संतुष्ट हो गया। मैं इसलिए ये बात सुनाना चाहता हूं कि इन आत्माओं ने इतनी दुआएं जमा की, इतना सबका स्नेह प्राप्त किया जो कभी भी बीमारी बीमारी के रूप में महसूस नहीं हुई, ऐसे सहज उसको पार कर लिया खेल खेल में, जो ये नहीं कहा मैं बीमार हूं, मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ है, मैं बेड पर हूं, मैं कोई सेवा नहीं कर रही हूं, सब कुछ होते ही हिसाब किताब शरीर के, वो आत्मा एकदम इससे मुक्त रही। किस बल से? सबकी दुआओं के बल से। तो दुआएं हमारे लिए रक्षा कवच हैं, और हरेक ब्राह्मण आत्मा को ये पक्का करना चाहिए कि हम अपने कम से कम इस दैवी परिवार से, पवित्र आत्माओं से, निमित्त आत्माओं से, बाबा से दुआएं लेते चले। बहुत रिस्पेक्ट के शब्द, सम्मानजनक शब्द। एक तो कहावत है कि ले लो दुआएं माता पिता की, माँ बाप की, तो सिर से उतर जाएगी गठरी पाप की। एक है पाप की गठरी उतारने का साधन योग, उसके लिए बहुत मेहनत है, योग किसी का लगता है किसी का नहीं, उसके लिए मन की बड़ी शुद्धता पवित्रता चाहिए। लेकिन अगर दुआएं ले रहे हैं हम, सेवा करके, सब सहयोग दे करके, हाजी करके, सम्मान दे करके, तो मैं समझता हूं ये दुआएं कई प्रकार के हमारे संस्कारों को चेंज कर देती हैं, विकर्म विनाश कर देती हैं। इसलिए हमारे इस ब्राह्मण जीवन का सुरक्षा कवच मैं समझता हूं दुआएं बहुत है, मदद करती हैं। और चौथा तो बाबा की छत्री है, याद की, याद की छतरी के नीचे रहने वाली आत्मा। इसलिए एक विधि अपना करके जाना, संकल्प करना पक्का, यहां से कभी अकेले नहीं निकलना है, कुछ भी हो सकता है कलयुग के अंदर। जब बाबा अपना साथ निभाने के लिए हम सब से वायदा किया है मैं सदा साथ रहूं, मैं कंबाइंड रहूंगा, तो क्या इतना प्यारा संबंध, इतना समीप का संबंध हमारा बाबा के साथ है। कभी भी घर से निकलो, ऑफिस में जाओ, कहीं भी जाओ, कमरे से निकलते एक सेकंड लगता है बाबा के चित्र को ऐसे देख लो। बाबा से बहुत प्यार से कहो, दिल से कहो, बाबा इस कार्य के लिए मैं जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं, आप मेरे साथ चलो। आप सर्वशक्तिमान, सर्व समर्थ, आपका वायदा है मैं आपके साथ रहूंगा, तो ऐसे शुद्ध संकल्प करके बाबा की शक्ति लेकर के निकलना। कईयों की विधि है, हमारी दादी यहां से कभी भी जाती थी, कभी भी गई, कहीं भी गई, एक मिनट बाबा के कमरे में जाएगी, बाबा से छुट्टी लेगी, फिर बाहर आके कहेगी आज बाबा ने मुझे ये कहा, आज नहीं जाना, आज जाना, कुछ न कुछ संदेश सुनाएगी। एक बार गाड़ी के अंदर दादी ने पूरा सामान लोड हो गया, जाने की पूरी तैयारी कर ली, हम सब लाइन में खड़े थे छुट्टी देने के लिए, बाबा के कमरे में गई लास्ट में, और बाहर आके कहती मेरा सामान उतार दो, मैं नहीं जाऊंगी। सबने सोचा दादी क्या हो गया, सब तो तैयारी है, टिकट है, ट्रेन भी है, सब है, साधन है। बाबा छुट्टी नहीं दी आज प्यार से। दादी क्या अनुभव हुआ आपको बाबा का? ट्रांस में नहीं जाती थी, कहती मैं बाबा के कमरे में गई ना तो बाबा हर बार इतना मुस्कुराता था, इतना प्यार से ऐसे ऐसे करता था, जाओ बच्ची बहुत अच्छा है जाओ। आज बाबा ने इसकी जगह पर लाल झंडी मुझे दिखाई, मैं तो नहीं जाऊंगी, उतार दो मेरा सामान। इतना फेथ था बाबा के ऊपर, ऐसे नहीं मैं कमरे में गई मेरे विचार होंगे, मेरे विचारों के कारण बाबा ने कुछ कहा होगा, नहीं, बाबा के कमरे में मैं गई, मैं तो एकदम निर्संकल्प होके छुट्टी ले रही थी और बाबा की शकल पर वो मुस्कुराहट नहीं थी जो मुझे बार बार छुट्टी देता है, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दिया और ऐसे लगा कि बाबा लाल झंडी दे रहा, नहीं बच्ची नहीं जाना है, नहीं गई, उतार दिया सामान। 2-3 दिन के बाद समाचार आया कि दादी का वहां जाना ठीक नहीं था, जहां जाना था कुछ अलग प्रकार का माहौल था वहां। तो कैसा सुंदर संबंध होगा बाबा के साथ, कितना अच्छा रिश्ता रखा कि 1 सेकंड लगता है बाबा को साथी बनाने में, पूछ लेने में क्या हर्ज है। संगम पर कहता है मैं तुम्हारे साथ साथ रहता हूं, मैं कंबाइंड हूं। कंबाइंड रहते हो कभी भाई लोग, रहते हो बहने रहते हो? अच्छा कैसे रहते हो कंबाइंड? वो तो ज्योति बिंदु है, जब तक आत्म अभिमानी स्टेज में नहीं रहेंगे तब तक कंबाइंड नहीं रह सकते, क्योंकि वो लाइट माइट स्वरूप है, बहुत प्योर है, शुद्ध है, शक्ति संपन्न है। और मैं आत्मा पतित विकारी संकल्प, कभी कभी कहता है ना, एक बहुत साफ स्वच्छ ड्रेस में हो और एक मैली ड्रेस पहन करके उसकी जोड़ी में बैठा हो, कहेगा ये जोड़ी ठीक नहीं है, जोड़ी ठीक नहीं है। एक गोरा हो एक काला हो, एक बहुत पतली हो एक बहुत मोटा हो, बाबा कहेगा ये जोड़ी ठीक नहीं है। ये स्थूल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूं कि अगर सूक्ष्म में भी मैंने अपने सिर पर बहुत सारे बोझ रख के माना बहुत मोटे हो गए और बाबा उसको, उसके पास तो बोझ ही नहीं, कोई हल्का है लाइट है। तो जब तक हमने अपने बोझ बाबा को अर्पित नहीं किए तब तक वो मेरे साथ कंबाइन नहीं होगा। जब तक मैंने अपने चिंतन को शुद्ध पवित्र नहीं रखा तब तक वो मेरे साथ नहीं रहेगा, अपवित्र आत्मा के साथ, नेगेटिव सोचने वाले के साथ, पर चिंतन करने वाले के साथ, पर दर्शन करने वाले के साथ बाबा कैसे रहेगा? ध्यान देना इस बात को, बाबा मेरे साथ अगर कंबाइंड है तो बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। भले कहता है तुम कमजोर हो, मैं तुम्हारी कमजोरी को भर दूंगा, कमजोरी में आपको फेल होने नहीं दूंगा, मैं सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन साथी बनना, उसको साथी बना करके चलना वो सहज नहीं है। इसलिए हम सब ध्यान दें, बाबा तो वायदा करता है मैं बच्चों के साथ रहता हूं, कंबाइंड रहता हूं, और कई समय से गुलजार दादी ने एक क्लास कराना शुरू कर दिया था, वो मेरे दिल में रहता है। लेकिन दिल में रहता ये कहके कहती थी, देखना दिल के अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई भी गंदगी पर, गंदे स्थान पर बड़े VIP को नहीं बिठाया जाता है, बाबा को बिठाना इस दिल में अपने मस्तक, यही तुम्हारा दिल है, ये तो नहीं है, आत्मा का दिल तो भ्रकुटी ही स्थान जहां आत्मा निवास करती है, मन ही भावनाएं ही है, उन भावनाओं के आधार से बाबा को अपने दिल तख्त पर बिठाना, भावनाएं कितनी पवित्र कितनी निर्मल कितनी शुद्ध चाहिए। तो सभी योग का कवच, सुरक्षा कवच 4th नंबर का है, समझ गए ना चारों। स्वरक्षक बनने के लिए हम सबको ये चारों कवच अपने साथ साथ रखने हैं और पहन करके रहने हैं। ड्रेस पर ड्रेस पहन लो, एक शुद्ध संकल्पों की है, दूसरी नम्रता की है, तीसरी दुआओं की है और चौथी बाबा की याद की, कंबाइंड स्वरूप की है। अपने आप सेफ्टी का कवच है, कुछ भी आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र जंत्र नहीं कर सकता। सिर्फ ध्यान रखना बाबा की आज्ञा, उसकी रक्षा करना, और वो रक्षा ये है, बाबा कहता है बच्चे थोड़ा जबान पर कंट्रोल, जबान पर कंट्रोल रखो। कितने सुंदर नियम बाबा ने बनाए, कितनी मर्यादाएं अच्छी अच्छी बताई हैं, हमारी रक्षा कर रही हैं। बाबा की शिक्षाएं हम आत्माओं की रक्षा कर रही हैं। आज अगर कहा गया है कि बच्चे बाहर नहीं खाओ, बाहर किसी के भिखारी के हाथ का नहीं खाओ, जो भी बेच रहे हैं कर रहे हैं वो नहीं स्वीकार करो, अनासक्त बन करके रहो। नहीं तो पहले की आदत बनी, मार्केट गए, ये देखा वो देखा, ये लिया वो दिया, खा लिया। बाबा ने हम सबको कितना सुंदर नियम बना के दिया, किसी के हाथ का भी नहीं खाना है। अगर हो सकता है तो अपने हाथ से बनाओ, अगर परिवार में ज्ञानी तो आत्माएं हैं, अच्छा संगठन, अच्छा परिवार, पॉजिटिव सोचने वाला है, पवित्र विचारों वाला है, तो उसके हाथ का खाओ। नहीं तो ये आजकल खिला पिला करके पता नहीं क्या क्या कर देते। हम सबको ध्यान देना है कि नहीं, जिसके हाथ का जब आया खा लिया, ऐसा नहीं है। अगर कोई जरूरी कहीं खाना भी पड़ता है, कोई नियम के कारण, कोई खुश करने के कारण कुछ स्वीकार करना पड़ता है, तो भी बाबा ने नियम बताया है, एक सेकेंड उसको पहले योग में बाबा को ऑफर करो, दृष्टि दो, शांत से प्यार से देखो, बाबा की शक्ति डालो, फिर खाओ। ऐसे नहीं जल्दी जल्दी जो आया मिल गया खा लिया। सुरक्षा के लिए हम सबको बाबा ने ये सब नियम और मर्यादाएं बनाई हैं। जितनी जो ब्राह्मण आत्माएं मर्यादाओं के लिए रक्षक बन करके रहता है कि मुझे इन मर्यादाओं को पालन करना ही है, वो मर्यादा रक्षक स्वयं सेफ हो जाता है। अमृत वेले से लेकर के कुछ नियम बने हैं, कुछ मर्यादाएं बनी हैं। हमारी मर्यादाएं बाबा ने मूल चार बताई हैं, बहुत सारी हैं, डिटेल तो बहुत है, लेकिन पहली मर्यादा संगम पर हर ब्राह्मण आत्मा को मन वचन कर्म से पवित्र रहना है। कभी भी इम्प्यूरिटी टच न करे। अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्रता पहली मर्यादा कहलाती है ब्राह्मण जीवन की। उसकी गहराई में मैं समझता हूं क्लासेज हुई होंगी भट्टे के अंदर, मैं इसमें नहीं जाता, लेकिन पहली मर्यादा अगर इसको हम दृढ़ता के साथ पालन करते हैं, कहीं भी बुद्धि नहीं जाती, न देह में किसी देहधारी में, न प्रभावित होते हैं, न लगाव, न झुकाव, न प्रभाव, न दबाव। इस मर्यादा के टूटने से ही ये चारों बातें अटैक करती हैं। या तो आत्मा उसके प्रभाव में आ जाती है, जब प्रभाव में आती है तो वो अपना दबाव डालती है। पहले तो प्रभाव हुआ, फिर प्रभाव के बाद झुकाव हुआ, और झुकाव जब बढ़ गया तो दबाव बढ़ने लगा, और दबाव के कारण बाद में फिर दुख शुरू हुआ, बंधन शुरू हो गए। लगाव, झुकाव, प्रभाव, दबाव, उसके कारण आत्माएं आज दबी हुई हैं, बंधन में चल रही हैं। क्या करूं, करना ही पड़ेगा, ये काम विकार के सब देन है। जिसने पवित्र जीवन जीने का संकल्प कर लिया, न किसी के लगाव में आता है, न झुकाव में आता है, न प्रभाव में आता है, न दबाव में आता है। कुछ कोई बंधन बांध नहीं सकता है, अगर आपने दृढ़ता से संकल्प किया है तो। अपनी कमी कमजोरी होने के कारण हम कहते हैं ये मुझे रहने नहीं देता। बाबा कहता तुम बकरियां थोड़ी हो, शेरनी हो, क्यों कहते हो रहने नहीं देता है? आप संकल्प कर लो मुझे रहना ही है, कोई मार थोड़ी देगा। अगर मार भी देगा तो अच्छा जन्म मिलेगा, चिंता नहीं करो। लेकिन इस पवित्रता की मर्यादा को बहुत दृढ़ता के साथ संकल्प करो, संगम पर इस मर्यादा में मुझे लूज नहीं होना है। अब इसके लिए आप थोड़ी कुछ, कईयों को बहुत युद्ध लगती है, मेहनत लगती है, और मेहनत युद्ध उनको लगती है जो अपने मन को बिजी रखने की कला नहीं जानते। हम सब जानते हैं एक एनर्जी है, यंग एज में इस एनर्जी को अगर सही प्रयोग नहीं किया गया तो माइंड को डिस्टर्ब कर देगी, शरीर पर भी इफेक्ट डाल देगी। इसलिए आवश्यक है इस एनर्जी को यूज किया जाए। जब हम पवित्र संकल्प धारण करते हैं और पवित्रता को दृढ़ता के साथ अपनाते हैं तो वातावरण की नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत चारों तरफ से तेज है। आज इंटरनेट खोल लो, मोबाइल देख लो, अच्छी चीजें देखना चाहो तो पहले वही ऐड आती है, वही गलतियां हमको अश्लीलता दिखाई देती है। छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है संसार में। कहेंगे क्या करूं, अचानक आ गई वो सीन, मैंने देख लिया, संकल्प चले, स्वप्न गंदे हो गए, स्वपन चलते युद्ध चला, युद्ध के बाद फिर विकारों ने घेर लिया। गलतियां हो रही हैं वायुमंडल के हिसाब से, उसको लोग नेचुरल समझ रहे हैं, और बाबा भी अननेचुरल सतयुग की दुनिया स्थापित कर रहा है। ये सब आवश्यक है नई सृष्टि की दुनिया की स्थापना के लिए, कलयुग के लिए जरूरी नहीं है। अगर कलयुगी बनकर रहना है तो भले वही जीवन जियो। अगर हम समझते हैं हम सतयुग की दुनिया के फाउंडेशन हैं, पिल्लर हैं, तो हम पिल्लर्स को इस मर्यादा को दृढ़ता के साथ पालन करना है, और इसके लिए मन को विजी करने की विधियां निकालनी है। जब स्वप्न आते संकल्प आते हैं तो उसका कारण है हम इसको लूज छोड़ देते हैं। अपनी दिनचर्या को टाइट करो, फ्री नहीं रहना है, अधिक सो नहीं जाना है, बिस्तर पर नहीं चले जाना है, इधर उधर की पुस्तकें अश्लील नहीं पढ़नी, ये चीजें नहीं देखनी, परहेज करो, ये मर्यादा है। और इस मर्यादा को जिसने पालन किया, मन को अच्छे अच्छे चिंतन में लगा दिया, मुरली पढ़ी, कुछ क्लासेज पढ़ी, आजकल इतने अच्छे इसमें साधन है मोबाइल के अंदर, अगर उनको सही रूप से यूज करो, अगर कोई को यूट्यूब देखनी ही है तो आज एक बाबा का कोई चैनल लगा दो, क्लासेस सुनो, कितनी अच्छी अच्छी क्लासेज हैं, कितने अच्छे अच्छे चिंतन है। अभी ये अमूल्य रतन, हमारा अनमोल रतन चल रहा है, 450 एपिसोड रिपीट हुए, चल चुके हैं, पीस ऑफ माइंड में आता है। देखती माताएं कोई देखो, इतनी सारी माताएं देखती हैं, पौने एक से सवा बजे तक डेली आता है पीस ऑफ माइंड में, केवल मुरली और कोई बाहर की बातें नहीं है। बाबा की अव्यक्त मुरलियां 69 से जो चली हैं, उन पर एक बहन मेरे से क्वेश्चन पूछती है, उसका कुछ न कुछ उत्तर मैं देता हूं बाबा की तरफ से स्पष्टीकरण के हिसाब से। अगर ऐसी चीजों की आदत डाल लो, नींद भी फट से आएगी, ऐसे चीजें सुनते हैं तो नींद भी जल्दी आती है, और साथ साथ बहुत सारी व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाते हैं। आदत है तो सुनो, व्यर्थ विकल्प संकल्प से बचने की युक्ति है मन को अच्छा चिंतन चाहिए। मन एक सेकंड भी शांत नहीं रहता, उसको तो काम चाहिए ही, और बाबा भी कहता है निर्संकल्प समाधि हमारी नहीं है, शून्य संकल्प होते ही नहीं है, जड़ थोड़ी है आत्मा, आत्मा चैतन्य है, उसकी सबसे बड़ी शक्ति संकल्प शक्ति है। संकल्प को अच्छा अच्छा होमवर्क दे दो, पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा चिंतन करो, अच्छा सुनो, अच्छे संग में रहो, तो ये मन पवित्र शुद्ध हो जाएगा, तो ये जो युद्ध करनी पड़ती है विकारों को जीतने की, वो युद्ध समाप्त हो जाएगी। तो सबसे बड़ी मर्यादा है मन वचन कर्म की पवित्रता, दूसरा शुद्ध अन्न, पवित्र हाथों से बनाया हुआ अन्न, जितना दृढ़ता से पालन करो उतना आपके विचार शुद्ध रहेंगे, सात्विक रहेंगे, सहज योगी जीवन बन जाएगी। तीसरा संग की बहुत संभाल करना, संग तारे कुसंग डुबोए। अगर कोई आपसे व्यर्थ चिंतन पर चिंतन नेगेटिव बातें यज्ञ के बारे में, बड़ों के बारे में, मुरली के बारे में कोई व्यर्थ बातें करे, बाबा कहता कान बंद कर लो, नहीं सुनना है, वो संग ठीक नहीं है, वो आपका पतन करेगा। केवल किसी की दुनिया वालों का संग नहीं, लेकिन ब्राह्मण परिवार में भी कई आत्माएं होती हैं जो इधर उधर के समाचारों की बहुत ज्यादा लेन देन करती, व्यर्थ बातों की लेन देन होती है, उस व्यर्थ चिंतन और व्यर्थ बातों को बाबा ने कहा है सुनना भी नहीं, देखना भी नहीं, बोलना भी। अगर कोई कर भी रहा होगा, आपको पता है वो कर रहा है, करेगा वो पाएगा, बाबा छोड़ने वाला नहीं है, हम क्यों अपने पर उठाएं, हमारी क्या जवाबदारी है। इसलिए अगर हम अपने आप को ऐसे संग से, व्यर्थ सोचने बोलने देखने वालों के संग से बचा के रहें, तो ये मर्यादा हमें हमारी सुरक्षा करेगी। और चौथा तो बाबा कहता है हर कदम में हर संकल्प में दिव्य गुणों की धारणा। दिव्य गुण हमारे हर कर्म से दिखाई देने चाहिए, कथनी और करने में अंतर न हो। जो हम दूसरों को कह रहे हैं वो हम पहले अनुभव करके कहेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए दिव्य गुण हमारा श्रृंगार है, और उनसे श्रृंगारी हुई आत्माएं अपने आप दूसरों पर प्रभाव डालती हैं, किसी के प्रभाव में आती नहीं है। तो हम सब मर्यादा की रक्षा करें, हमारी स्मृति, बोल, दृष्टि, वृत्ति, कृति सबके लिए मर्यादाएं हैं। उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि उसके लिए और घंटा क्लास चाहिए। आप सब सोचना, स्मृति के लिए मर्यादाएं क्या हैं, दृष्टि के लिए मर्यादाएं क्या हैं, बोल के लिए मर्यादाएं क्या हैं, कर्म के लिए मर्यादाएं क्या हैं, संबंध संपर्क के लिए मर्यादाएं क्या हैं, बिजनेस अथवा कोई भी नौकरी करते हैं उसके लिए मर्यादाएं क्या हैं, सब के लिए बाबा की मुरली में मर्यादाएं हमेशा सुनाई गई हैं। और मर्यादाएं हमारी रक्षा करती हैं, अगर हम मर्यादाओं की रक्षा करते उनको पालन करते हैं तो कभी भी कोई भी विकार वार नहीं कर सकते। और तीसरी यज्ञ रक्षक की बात आती है, बाबा ने ये रुद्र यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की हम सब संभाल करने के निमित्त है। एक है स्नेही सहयोगी, बाबा कहता वो भी योगी बन जाते हैं, पहले तो स्नेही सहयोगी बनते हैं, अच्छा लगता है, बहनों की जीवन अच्छी लगती है, ज्ञान अच्छा लगता है, उनकी धारणाएं अच्छी लगती हैं, स्नेही बन जाते, स्नेही के बाद फिर थोड़ा थोड़ा सहयोग देते और सहयोग देते देते योगी जीवन बन जाती। अब योगी जीवन में अगर नियम और मर्यादाओं को पालन करने हैं तो वो यज्ञ रक्षक कहलाते हैं। और हमेशा जो यज्ञ के वफादार बच्चे होते हैं वो अपने आप को अगर मालिक समझते हैं तो मालिक पना वही है कि कहीं भी कोई भी बात नेगेटिव देखी सुनी उसको समाया जाए, फैलाया न जाए। फैलाना ही यज्ञ के अंदर बहुत बड़ा विघ्न है। समाप्त करने के लिए शुभ चिंतक बने, उसके लिए तपस्या करें, एकांत में जाएं, शुभ चिंतक वृत्तियों वाले भाई बहनों का ग्रुप हो जो उस विघ्न को खत्म करे, समाप्त कर दे, न कि उसके लिए लंबे लंबे पत्र बनाएं और कहें कि देखो इसने ऐसा किया, मैं अभी हेडक्वार्टर में बड़ों को बताता हूं, और नीचे लिखें यज्ञ रक्षक, अपना नाम भी ना लिखें। बाबा कहता वो यज्ञ रक्षक नहीं है, वो यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न डाल रहे हैं, नेगेटिव वातावरण बना रहे हैं। वातावरण में शक्तियां हों, आज इतना मधुबन का वातावरण लोगों को खींच रहा है, पवित्र शुद्ध आकर्षित करता है, वातावरण हमारी वृत्तियों से निर्माण होता है, बोलचाल से वार्तालाप से वातावरण बन जाता है। इसलिए कोई भी व्यर्थ न सोचना है, न बोलना है, न देखना है, और कभी भी ऐसी वार्तालाप नहीं करनी है, बातचीत नहीं करनी है जिससे हमारे यज्ञ के अंदर वायुमंडल भारी हो और वो भारी वायुमंडल विघ्न बन जाए। इस बात को ध्यान देना, हम सब बाबा के वफादार आज्ञाकारी ईमानदार बच्चे हैं, हम यज्ञ रक्षक बन करके रहें, अपने पवित्र संकल्पों से, ऊंची भावनाओं से, तन मन धन के सहयोग से, जहां आवश्यकता है वहां हाँ जी कहने से हम यज्ञ रक्षक बन सकते हैं। तो यज्ञ रक्षक, मर्यादा रक्षक और स्वरक्षक बन करके इस भट्टी से दृढ़ता का संकल्प लेकर के जाना, ठीक है? ओके, ओम शांति।
अच्छी हो बाबा तुम।
ओम शांति। राजू भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गहरा सब्जेक्ट था, धारणाओं के ऊपर आपने हमारा विशेष अटेंशन खिंचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।